मन का यही कसम है, दिल की यही लगन है। मन का यही कसम है, प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है।
ओम शांति। हम सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं। जो भी लक्ष्य हम सबने रखा है, उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम सबके कदम बढ़ रहे हैं, और हम सब चाहते भी हैं कि हमारे सामने ऐसा रोल मॉडल हो जिससे कि हमारी मंजिल बहुत सहज हो जाए। हम सभी के सामने, पूरे यज्ञ के सामने अभी तक केवल एक ही ऐसा आत्मा है जिसने अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया है, और वो है हमारे ब्रह्मा बाबा। हमें ये सौभाग्य मिला है ब्रह्मा बाबा के साथ काफी समय तक रहने का भी। तो कर्मातीत अवस्था तक बाबा ने क्या क्या पुरुषार्थ किया और कैसे बाबा कर्मातीत बने, उनकी कुछ बातों को आज हम लोग आपस में शेयर करेंगे, जिससे कि हम सब भी उस कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सके। जब से बाबा ज्ञान में आए थे 1936-37 यज्ञ की स्थापना हुई, तो हम सब ने सुना है, वो तो खुद देखा नहीं, कि बाबा ने ये रियलाइज किया, पढ़ाई को बहुत सीरियसली लिया शुरू से। और हम सब ने सुना है कि बाबा ने अभ्यास किया लिख लिख के। क्या अभ्यास किया था? आत्मा का, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा, बाबा की लौकिक पत्नी बच्ची आदि आदि। तो बाबा ने ये अभ्यास पक्का किया। तो कोई भी अभ्यास अगर पक्का हो जाता है तो उसका कुछ प्रमाण भी दिखना चाहिए। जो जो चीज हम अचीव करते हैं उसका अगर कोई प्रमाण होता है और उसकी अनुभूति होती है, तो उसको हम भी स्वीकार कर लेते हैं और दूसरे भी सब स्वीकार कर लेते हैं। तो बाबा को यह अभ्यास पक्का हो गया था। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये था कि जब सब हम सब लोग बाबा के सम्मुख जाते थे 1961 के अंत में हम ज्ञान में आए, और तब से बाबा से कई बार मिले। 1962 में साकार में बाबा से पहली बार मिलना हुआ, तो बाबा के पास जाते थे और बाबा ऐसे हाथ बढ़ाते, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, आओ बच्चे। और ऐसा मैग्नेटिक पुल होता था बाबा में कि बाबा की बाहों में खिंचे चले आते थे। और दूसरी बात कि बाबा जब भी किसी को दृष्टि देते थे ना, बस बड़ी फास्ट, जैसे कई पार्टी आई है, थोड़ी देर तक 10-15 सेकंड तक दृष्टि रहती थी बाबा की, फिर दूसरे पर चली जाती थी, फिर इतनी दृष्टि के बाद तीसरे पर। तो हम लोग जैसे ही बाह में आते थे या बाबा से दृष्टि लेते थे, विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने ये पाठ अपना मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये इतना पक्का कर लिया था कि दूसरा भी दृष्टि लेते ही विदेही हो जाता था। फिर थोड़ी देर तक उस स्थिति में रहते थे, फिर बाबा ऐसे थपथपाते, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे आओ, तो जैसे फिर से देह में आने का अभ्यास करना पड़ता था। कोई आत्मा जाती नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस ऐसे विड्रॉ हो जाती है, विदेही आत्मा हो जाती है, अशरीरी हो जाती है, जो हम सब आत्मा स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल में एकदम अनुभव होता था। थोड़े समय के लिए बाबा हर एक को वो अनुभव करा देते थे, क्योंकि बाबा की स्थिति वो शुरू से आत्मिक स्वरूप की थी। फिर उसके बाद बाबा टोली देते थे, हालचाल पूछते थे ऐसे। तो पहली बात हम ये चेक करते चले, जो आज हम लोग शेयर कर रहे हैं उसका भाव केवल सुनने तक नहीं है, हम अपने में चेक करते चले कि हम उसी राह के राही हैं, तो हम भी बाबा की तरह कर्मातीत बन जाएंगे। तो ये देखें कि जब भी हम किसी को देखते हैं, दृष्टि देते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं, तो हम भी उसे देहभान से परे कर देते हैं, भले मोमेंटरी हो। जैसे मानो ये रुमाल है, हम इसे अगर ऊपर फेंकेंगे यूं, तो कोई भी चीज जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की जो खींचने की शक्ति है उससे ज्यादा है, तब तक ये ऊपर जाएगा, और जब पृथ्वी की शक्ति ज्यादा हो जाएगी फिर से ये नीचे आने लगेगा। तो थोड़े समय तक के लिए बाबा बिल्कुल विदेही बना देते थे, और उसके बाद जब बाबा थोड़ा स्थूल रीति से फिर देह में लाने का पुरुषार्थ करते थे, तो हम देह में आते थे। एक बात तो हम ये चेक हम करते चले अपने पुरुषार्थ में, भले हम सब लोग अलग अलग समय से ज्ञान में, कोई 10 साल, 20 साल, 25, 50 साल के भी होंगे, 40, 45 साल, तो हमने आत्मा का अभ्यास इतना पक्का किया है, जो हम जिसको दृष्टि दे या जिसके भी संपर्क में आए वो आत्मा को विदेही कर सके, नंबर एक। दूसरी बात, ये कुछ जो बातें होंगी वो आप खास उसको ख्याल रखना। दूसरी बात, पहली बार जब हम बाबा से मिले तो बाबा से हर बच्चे को ये अभ्यास आभास होता था कि बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता, क्योंकि हम सब विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने के इच्छुक आत्मा यहाँ बैठी है। तो जो भी विश्व महाराजन बनने के रास्ते में होगा उसने विश्व की समस्त आत्माओं का दिल जीता हुआ हो, और हमारा भी लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भी आत्मा हमारे संपर्क में आए वो यही समझे कि हाँ ये ब्रह्मा कुमारी वाले जो हैं बहुत अच्छे हैं, ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, भले हम ज्ञान में न चल सके। बहुत लौकिक दुनिया में ऐसे हैं, वो ज्ञान अच्छा समझते हैं, खुद धारणा में नहीं चल पाते, लेकिन वो अंदर से समझते हैं हम नहीं चल पाते, हम कमजोर है, पवित्र नहीं रह सकते, लेकिन इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, पवित्र है, महान है, और ये उस राह के राही है। तो ये क्लैरिटी उन सब के माइंड में, इसीलिए बाबा से ना जब कोई भी मिलता था तो हर एक को ये होता था बाबा जितना मुझे प्यार करता है। हम भी जब पहली बार मिले तो हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे और बाबा कानपुर आए हुए थे, तो कानपुर जब बाबा से मिलने गए, पूरा ग्रुप गया था लखनऊ से, पहुंचने में कुछ लेट हो गई थी, पहुंचना था सुबह 7-7:30 बजे, पहुंचे 8:30-9 बजे, मुरली पूरी हो गई थी बाबा की, और बाबा ऐसे ही टोली वगैरह दे रहे थे, हम लोग पहुंचे तो बस सबसे बाबा मिले, तब तो हम बहुत यंग थे, 16-17 साल के थे। बाबा के पास गए तो बाबा ने देखते ही कहा, आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो हम तो नए ज्ञान में थे, हमने सोचा चूंकि हमें जल्दी आना था 7 बजे और लेट हो गया 1.5 घंटा, तो बाबा सोच कह रहा है कि भाई तुम लोग लेट हो गए, हमने कहा बाबा थोड़ा लेट हो गया, ये इतना अच्छा लेट हो गया। बड़ी रहस्यमयी मुस्कान के साथ, बाबा तुम्हारा बहुत समय से। तो बाबा का भाव क्या होता था? बेहद का। कलप पहले वाले हम बिछड़े बच्चे हैं, तो कलप पहले के बिछड़े और अब मिले हैं, तो बाबा देखो 5000 वर्ष से भगवान हमारा इंतजार कर रहा। तो दूसरी ये बात कि हम भी जब से ज्ञान में आए हैं, तो हम ये देखें कि हमारा बेहद का दृष्टिकोण कितना हुआ है जीवन में। हद की बातें तो हम सब करते ही रहे हैं सदा, लेकिन बेहद का दृष्टिकोण कितना हुआ है, ये बाबा की हर बात से झलकता था। फिर बाबा से जब मिले तो बाबा ने पूछा, हा क्या नाम है बच्चे? तो हमारा लौकिक नाम एक्चुअली श्री है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे होता है ना, तो लौकिक फर्स्ट नेम श्री है। हमने बताया श्री, तो बाबा ने कहा क्या बच्चे क्या नाम? फिर हमने रिपीट किया श्री श्री। ओ तो देखो बाबा कितने जॉली मूड के भी थे, ह्यूमरस थे, और बच्चों के साथ बच्चा, हम तो बिल्कुल यंग थे। तो बाबा ने कहा अरे दादी आओ आओ आओ, दादी गंगे आओ, प्रकाश मुनि आओ आओ, आज बाबा को एक ऐसा बच्चा मिला है जो बाबा से भी महान है। वैसा हो सकता है कोई? ह्यूमरस, क्योंकि यंग के साथ बाबा यंग, बूढ़ों के साथ बूढ़ा, बच्चों के साथ, ये बाबा की सबसे बड़ी ब्यूटी थी, जिससे हर एक को लगता था बाबा मेरा है। तो वो हम अपने को एक चेक ये करते तो हम तो समझ नहीं पाए पूरा। फिर बाबा ने उसका रहस्य बताया कि देखो बच्चे, श्री कौन लगा सकता है अपने नाम के आगे? कौन लगा सकता है? जो देवी देवता, जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी न तो हमारी आत्मा पवित्र है न शरीर, क्योंकि शरीर विकारों की उत्पत्ति है, आत्मा भी 5000 वर्ष के चक्कर में आते आते तमोगुणी बन गई है, इसलिए अभी तो कोई भी नहीं है। बाबा भी अपने नाम के आगे श्री नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता, तुम भी नहीं। तो आज से बाबा तुम्हारा नाम मोहन कर देता है। तो देखो बाबा ने नाम भी चेंज कर दिया। तो नाम चेंज करने का भाव क्या है? जब से हम ज्ञान में आए हैं तो हमें पुरानी लौकिक बातों की विस्मृति हो जाए, भले शरीर वही है, संबंध वही है, कर्तव्य धन धंधा सब कुछ वही है, लेकिन बुद्धि से उसकी विस्मृति हो जाए, भले उस वातावरण में रह के कार्य व्यवहार वही है, लेकिन बाबा चाहता है जब से हमारा ये नया जन्म ब्राह्मण जन्म हुआ है, पुराने जन्म की हमारी विस्मृति हो जाए। तो इसीलिए बाबा के सामने कोई भी आता था तो वही मानो किसी का नाम बहन का माया देवी होता था, तो बाबा कहता था अरे बच्ची अब माया का क्या काम, अब तो माया से विदाई। बाबा उसका नाम जैसे भी गीता देवी या कुछ भी ऐसा नाम कर देता था जो ज्ञान युक्त होता था। एक बच्चे का नाम कोई गरीब दास था, हाँ बाबा ने कहा बच्चे अरे अब तो भगवान मिला है, इतना खजानों का मालिक, सारे खजाने तुम्हें रहे हैं, अब बाबा तुम्हारा नाम अमीर चंद कर देता है। अमीर चंद कर दिया, गरीब भी नहीं और दास का क्या मतलब, अब तो बाबा के बच्चे बने हो। और इसलिए तो भाव क्या है, हम अपने को चेक करते चले, भले अभी हमारा लौकिक नाम और वो सब कोई चेंज की बात नहीं है, लेकिन पुरानी चीजों से पुरानी बातों से हम कितने विस्मृत हुए हैं, और हमारा ये ब्राह्मण जन्म है, इस ब्राह्मण जन्म में हमें ब्राह्मण जन्म की ही स्मृति रहे, और ये दूसरी जो है ना वो बातें उसके विस्मृति होती जाए। तो एक ये अनुभव किया। तीसरी बात, जब से हम लोग ज्ञान में आए थे तो देखा बाबा शुरू में सब कहते थे बच्चे अपनी जन्म कहानी लिख करके दो हरेक को, और लेकिन बाबा की कितना तेज दृष्टि थी, हमें भी याद है हमने लिख करके 20-25 पेज में जस्ट, तब तक और क्या होता है, कोई विकारों की बात नहीं होती है, भाई फलाना जगह से ये चोरी करके खा ली या ये पिक्चर देखा या ये पूरा का पूरा बाबा बोलता है। तो 16-17 साल की तो आयु थी, बाबा ने पलटा, हाँ बच्चे ठीक है ये तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी वो है, लेकिन बाबा ने कहा कि जो भी है, शुरू में बाबा ये कहते थे, आप सब भी बाबा की पुरानी मुरली पढ़ते होंगे, तो बाबा पहले ये कहते थे बच्चे मनसा में तूफान अंत तक आएंगे, उससे विकर्म नहीं बनता है, वाचा में सावधान रहना है, कर्मणा से कोई विकर्म नहीं करना है, कर्मेंद्रियों से, इससे विकर्मों का खाता बनता है। तो पहले बाबा 62-63-64 में ऐसे साकार मुरलियां होती थी। फिर और 2-3 साल बाद देखा बाबा कहता था कि देखो बच्चे अगर मुख से भी किसी को दुख दिया, कटु वचन बोले तो दुखी हो मरेंगे, दुख दिया तो दुखी हो मरेंगे। फिर बाबा धीरे धीरे, और जब 67-68 तक हमने देखा बाबा कैसे बच्चे मनसा में भी अगर विकर्म की बात, विकारों की बात आती है, वृत्ति में आती है, स्वप्न में आती है, ये भी विकर्मों का खाता बनता है। तो देखो बाबा स्थूल से सूक्ष्म तक लेते जा रहे हैं। ऐसे हम भी समझें कि हम लोगों की भी ज्ञान की बचपन की अवस्था निकल गई, यौवन की अवस्था, अब बाबा कहता है अब सबकी कौन सी अवस्था है, वानप्रस्थ अवस्था है। तो इसमें हम चेक करते चलें, मेरे मनसा में भी, मेरे वृत्ति के अंदर भी, स्वप्न में भी कोई वेस्ट संकल्प, विकारी संकल्प, व्यर्थ संकल्प तो नहीं आते हैं, क्योंकि उसका भी खाता बनता है। ये बाबा ने बताया क्योंकि बाबा सूक्ष्म तक लाए। और सबसे बड़ी बात जो हमने देखी 18 जनवरी को हम यहाँ पर आ गए थे, आज इंजीनियरिंग पास करने के बाद 67 में पास कर ली थी, आसाम में पहली पोस्टिंग हुई, हमारी दिल नहीं थी, बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे जाओ वहाँ बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हमारी दिल थी कि हम आप जहाँ से आए ना, क्योंकि हमने जियो फिजिक्स में एमटेक किया था तो वहाँ नेशनल जियो NGRI है, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च, वहाँ भी हमारा 3 जगह सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें एक NGR, तो हमने कहा बाबा वहाँ जाते हैं, वहाँ सेंटर भी है, पालना होगी, लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे तुम्हें वहाँ जाना है आसाम में, क्योंकि वहाँ सेंटर नहीं है, वहाँ मेरे बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं और वहाँ जाके तुम्हें खोलना है। तो शुरू से ही बाबा जब पढ़ते थे तब से ही लेकर पहले पहले बाबा ने उस जगह सेंटर खुलवाया 63 में 64 में, धनबाद जहाँ पढ़ाई करते थे, उसके बाद जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी वहाँ पर बाबा भेज, ऐसी जगह होती थी जहाँ सेंटर नहीं होता था और बाबा खोल देता था, खुलवा देता था। तो वहाँ पर जब उधर गए तो गए, बाबा ने बोला था थोड़े समय में ही हो गया, और बाबा ने कहा जाते वक्त कि बच्चे बाबा भेज रहा है, समय पर बाबा बुला लेगा। ये शब्द गौर करने जैसे, उस वक्त तो ख्याल में नहीं आया, लेकिन समय पर बाबा बुला लेगा ये बाद में तब ख्याल आया जब 1969 में जनवरी में बस बाबा की तरफ से कुछ इशारा आया और हम मधुबन पहुंच गए 17 जनवरी की सुबह, और 17 और 18 जनवरी 1969 हम मधुबन में ही थे और बाबा ने जैसे बुला लिया। तब विदेशों में कोई सेंटर नहीं था लेकिन बाबा ने अपने पास बुला लिया। तो देखो बाबा के एक एक शब्द में कोई ना कोई रहस्य समाया होता है, और उन 2 दिनों में बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। तो बाबा जैसे मैं बताया ना, शुरू में बाबा कहते थे हाँ बच्चे कोई प्रश्न है पूछो, हम पूछते थे, लेकिन अंत में जो बाबा की कर्मातीत अवस्था देखी, लगभग 6-7 बार मिलना हुआ 2 दिन में, बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ऐसे दृष्टि देते थे थोड़ी, और दृष्टि देके बाबा कहते थे बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए, मतलब हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत उन दो दिनों में नहीं पड़ी। 6-7 बार मिले, कभी सेवा के एम से, कभी पुरुषार्थ के एम से, कभी सेंटर की उसके सर्विस के एम से, अलग अलग, लेकिन हर बार बस बाबा दृष्टि देके मन के भाव को परख लेते थे। ये है कर्मातीत अवस्था के निकट की निशानी। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है मैं कोई जानी जाननहार नहीं हूं, थॉट रीडर नहीं हूं। सही बात है, थ्रू आउट 62-63 से जब भी मिलते थे बाबा को बताते थे तब बाबा उत्तर देते थे, लेकिन इन दो दिनों में बाबा ने वो अनुभव कराया कि जब आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो अपने संकल्पों के ऊपर इतनी विजय हो जाती है उसके, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय संस्कृति में भी गायन है, मन जीते जगत जीत की स्थिति, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो बाबा ने अपने मन को इतना जीत लिया था, अपने मन के अंदर संकल्पों को इतना जीत लिया था कि जो आत्मा सम्मुख आती थी उसके मन के भाव को परख करके और उसका समाधान दे देते थे। तभी तो भक्ति मार्ग में हम अपने इष्ट देवों की यानी ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण की आत्मा, यही तो हमारे इष्ट देव है, इनके मंदिर बनाएंगे, पूजा करेंगे, और तभी तो उन मूर्तियों से हमें यह अनुभव होगा हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। तभी तो गायन है भक्तों का कि भक्त इच्छा करता था, भगवान तक इच्छा पहुंचती थी और भगवान कहते थे हाँ वरदान मांग लो, और बस भगवान के सम्मुख जाते थे और भक्त कहता था ये इच्छा है या मन में संकल्प, भगवान के मुंह से कौन सा शब्द निकलता था, तथास्तु, एक शब्द, और इच्छा पूर्ण हो जाती थी। तो हम भी ये चेक करें जो ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम लोगों ने अनुभव किया, हम सब यहाँ मास्टर ब्रह्मा बैठे हैं जो बाबा कहता है। अब लोगों को हम सब से वो अनुभव होगा जो हम लोगों को ब्रह्मा बाबा से हुआ। तो एक एक बच्चे का ये, तभी तो भक्त लोग क्या होगा, अभी द्वापर युग से हमारी मूर्ति बना के मंदिरों में हमारी पूजा करेंगे और हमारी मूर्तियों से जब उन्हें यह अनुभव होगा कि हाँ मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है, भगवान ने मेरी इच्छा पूर्ण की, हमारी मूर्तियों में इतनी शक्ति होगी, तो अभी तो हम चैतन्य हैं। तो यहाँ पर जिनकी भी हम सेवा करते हैं, जिनके भी संकल्प संपर्क में आते हैं, देखना है हमें हर आत्मा का दिल हमने जीता हो, उसकी मनोकामनाएं उसको इतना सहयोग दिया हुआ हो, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण की हुई हो, तभी तो यहाँ पर हम चैतन्य में जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे तभी तो वो हमारी मूर्तियां बनाकर द्वापर युग से मंदिरों में हमारी पूजा करेंगे, यहाँ पर उनका दिल जीता हो, तो जो ब्रह्मा बाबा से अनुभव होता है। तो ये अंतिम दो दिनों में सबसे बड़ी से बड़ी बात कि बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा मन की बात पढ़ के तुरंत कह देते थे बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। जैसे पानी होता है ना, जमीन में पानी पड़ा हो, हम अपनी छवि भी उसमें देख सकते हैं, अगर पानी में कुछ हलचल नहीं है, लहरें नहीं है तो वो देख सकते, लेकिन छोटा सा कंकड़ भी हमने अगर पानी में फेंक दिया तो क्या होगा, लहरें पैदा होंगी, हलचल होगी और हम अपनी छवि भी नहीं देख सकते, कोई भी अपनी छवि नहीं देख सकता। तो ऐसे ही हमारे मन में अगर संकल्पों की कुछ भी लहरें हुई, भले बाबा ने कहा अभी बच्चों के मन में विकारी संकल्प नहीं है, लेकिन कौन से संकल्प हैं, व्यर्थ संकल्प हैं। और व्यर्थ संकल्प कौन से हैं, उसकी परिभाषा गुलजार दादी ने कुछ दिन पहले क्लास कराई थी हम लोगों की, बड़ा अच्छा बताया कि व्यर्थ संकल्प ये नहीं कि कोई किसी ने कोई बात कह दी, कोई अपमान की बात हुई, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, नहीं। अगर मानो हम योग करने बैठे हैं और बस चाहते हैं बाबा से मेरा मिलन हो, उसमें अगर मानो सेवा का भी संकल्प आ गया, वो भी वर्तमान समय के मुताबिक व्यर्थ संकल्प है। क्यों? क्योंकि वो संकल्प आया मेरे मन के इच्छा के विपरीत आया। इसका मतलब मैं मन जीते जगत जीत नहीं हूं। मन में यह है कि मैं बाबा के साथ बस योग याद और कोई नहीं, लेकिन सेवा का संकल्प आया, किसी का सहयोग का संकल्प आया, वो खराब संकल्प नहीं है, विकार नहीं बनता, लेकिन चूंकि मेरी इच्छा के विपरीत आया इसीलिए मैं इच्छा मात्रम अविद्या नहीं बना। और इसलिए जब मैं इच्छा मात्रम अविद्या यहां बन जाऊंगा तो फिर मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई संकल्प भी पैदा नहीं होगा और वो मुझे कर्मातीत अवस्था के निकट ले जाएगा। अब बाबा की यही स्थिति थी, अंतिम दो दिनों में देखी हमने कि बिल्कुल बाबा के सम्मुख जाते थे और मन के भावों को परख करके बाबा इच्छाओं को पूर्ण कर देते थे। यही अनुभव हमने 18 जनवरी की रात्रि क्लास में किया, अंतिम क्लास थी। देखो तो जितना हम कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे उतना हमें ये अभ्यास आभास हो जाएगा कि हाँ अब मैं संपूर्ण बन के जाने वाला। बाबा का यही देखा 18 जनवरी को ना, बाबा प्रातः क्लास में आए और बाबा ने पूरा योग कराया। उस दिन बाबा ने कोई भी क्लास नहीं कराई, मुरली नहीं सुनाई। बाबा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार कह के चले गए। फिर बाबा ने यीशु दादी को बोला आज जितने भी लेटर लिखवाने हो लिखवा लो, कोई भी काम पेंडिंग ना रहे। तो यीशु दादी ने सारे पत्रों के जवाब लिखवा दिए। फिर जो संगम, जो हमारा म्यूजियम है नक्की लेक के पास, वो बिल्डिंग वो लेने की कई दिनों से बात चल रही थी लेकिन क्लियर नहीं हुई थी, तो बाबा ने उस दिन वो बात भी पूरा क्लियर करी, फाइल को वो क्लियर किया। रोज रात्रि क्लास होती है 8:45 बजे मधुबन में रात को। उस दिन बाबा ने 7 बजे ही बोला, जमुना प्रसाद भाई हैं, आज बाबा अभी क्लास कराएगा, जल्दी सबको बोलो कि 7:30 बजे तक क्लास में आ जाए। तो देखो ये बाबा को आभास हो गया था, जो भीष्म पितामह का गायन है, इच्छा मृत्यु का वर्त। इच्छा ये तो हम सबको, शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन जब कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था लगभग हो चुकी थी, बाबा को आभास हो गया था कि आज ये मेरा अंतिम मिलन है। तो इसीलिए बाबा ने क्लास भी 1.5-2 घंटा प्रीपोन करी, सब लोग आ गए और बाबा भी 7:30 बजे क्लास में आ गए और बाबा ने बहुत पावरफुल क्लास उस दिन कराई। तो ये पूरा इस बात का आभास देता है कि जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी तो हमारे शरीर के सारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएंगे। नॉर्मल केस में बाबा को कई बार खांसी आती थी, तो बाबा को जब खांसी आती थी तो बाबा हंसी में कई बार कहते थे कि मैं शिव बाबा को बोलता हूँ, बाबा ये मेरी सखी है ना, इससे मेरा पीछा छुटाओ। तो बाबा क्या कहते थे, बच्चे ये तुम्हारा कर्मों का खाता है, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट है, बाबा इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये तो तुम्हें ही चुकतू करना है। अगर मैं तुम्हारे साथ कोई फेवर करूं तो मुझे सब बच्चों के साथ करना पड़े, इसीलिए ये तुम्हें चुकतू करना है, इसमें बाबा कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए जब भी बाबा को खांसी आती थी ना तो अक्सर देखते थे बाबा के पास, यहाँ अभी भी हिस्ट्री हॉल में एक ट्रांसलाइट का चित्र रखा है, आपने भी देखा होगा, कृष्ण का है और लक्ष्मी नारायण का। तो जब खांसी आती थी कई बार हमें लगता था बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है जैसे, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा, देखो बच्चे अभी ये पुराना शरीर है, पुराना हिसाब किताब है, तकलीफ होती है, खांसी है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा मिशनो कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी, कोई भी वहां व्याधि नहीं होगी। वह उस नई दुनिया की स्मृति से बाबा की स्वस्थिति इतनी पावरफुल हो जाती थी कि खांसी रूपी परिस्थिति जो थी शुरू में वो शक्तिशाली प्रतीत होती थी, लेकिन थोड़े समय में ही, जरा सी देर में बाबा स्वस्थिति को इतनी मजबूत कर लेता था कि वो खांसी जैसे तुरंत दूर हो जाती थी और उस पर विजय हो जाती थी, और बाबा जैसे वो अपना पूरा का पूरा बच्चे, देखो पुराना शरीर है, ऐसी तुम बच्चों को भी ना ये होना चाहिए, जब भी कोई शरीर की व्याधि हो उसमें विचलित नहीं होना है, नई दुनिया की स्मृति से तुम्हें वैसा बन जाना है। एक ये कर्मातीत अवस्था की निशानी है। उस दिन पूरी मुरली में बाबा को 18 जनवरी की रात्रि क्लास को एक बार भी खांसी नहीं आई। वो टेप मिलती है, सीडी मिलती है, अंतिम मुरली वो जरूर हो, तो बाबा को एक बार भी, जो इस बात का प्रतीक है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे तो हमारे शरीर के सारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएंगे और फिर हम कर्मातीत अवस्था को।
प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
तो बात हो रही थी 18 जनवरी 1969 की। तो बाबा ने मुरली चलाई, बाबा मुरली चला रहे थे, हम भी सामने बैठे हुए थे और दादी बैठे हुए थे, 20-25 लोग ही थे, तब तो कम लोग हुआ करते थे। तो देखो, जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है तो कैसे मन की बात को तुरंत पकड़ लेती है। तो मुरली सुनते सुनते हमारे मन में ख्याल आया, जस्ट अपनी पर्सनल बात बताते हैं कि बाबा कुछ हमारे लिए पर्सनल बोले। अभी भी जैसे अव्यक्त बाप दादा आते हैं ना, तो कईयों के मन में आता होगा हमें स्टेज पे जाने का, भाई चांस मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा की दृष्टि व्यक्तिगत मिल जाए। तब तो सम्मुख होते थे, हिस्ट्री हॉल में बिल्कुल आमने सामने ही बैठा करते थे, बाबा के बिल्कुल क्लोज, कि बाबा कुछ बोले। अब देखो, बाबा की तो कर्मातीत अवस्था थी, अब मन जीते जगत जीत हो चुका था बाबा, तो अपने मन के कोई संकल्प नहीं थे, तो हमारे मन में जो जैसे संकल्प आया तुरंत बाबा ने पढ़ा होगा, और तुरंत ही बस कुछ सेकंड के बाद ही बाबा ने उस मुरली में जैसे महावाक्य उच्चार दिया। नाम लेके देखो, ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, आदि आदि कुछ महावाक्य संपूर्ण बन जाए। ऐसे करके बाबा ने, देखो मन में संकल्प आया, और जो भक्ति मार्ग में गायन है कि भक्त के मन में संकल्प आया और भगवान ने पूरा किया, तो ये प्रैक्टिकल यहाँ पर अनेक बार बाबा से हम लोगों को ये अनुभव होता था। और उस दिन तो खास हुआ, कर्मातीत अवस्था बाबा की पूरी हो चुकी थी, इसीलिए बाबा ने ये कहा तो नेचुरली बहुत खुशी की बात हमारे जीवन के लिए, हमेशा के लिए वो मार्ग प्रदर्शना बन गई। फिर उसके बाद बाबा ने मुरली पूरी करी, और ये जैसे बताया ना, उस दिन हमेशा बाबा को काफी खांसी और तकलीफ होती थी, लेकिन उस दिन एक बार भी बाबा को खांसी और तकलीफ नहीं हुई। वो इस बात का प्रतीक है कि शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल ने जैसे संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर। बाबा ने कई बार मुरली में बोला है, कर्मातीत अवस्था होगी और थोड़े समय तक उस कर्मातीत अवस्था का अनुभव बच्चे करेंगे, उसके बाद शरीर छोड़ के कर्मातीत अवस्था हो और तुरंत छोड़ दें तो क्या फायदा हुआ, उसका आनंद भी तो लेना चाहिए कर्मातीत अवस्था का। तो वो बाबा की उस समय जैसे स्थिति थी, एक बार भी न कोई खांसी आई न कोई व्याधि हुई, और बाबा ने पूरी मुरली चलाई। उसके बाद बाबा उठ के खड़े हुए और हिस्ट्री हॉल तो छोटा ही है, बस दृष्टि देने लगे बाबा, और दृष्टि देके एक एक बच्चे को दृष्टि दी, और खास दृष्टि बाबा की दादी जी की तरफ आती थी। दादी सामने बैठे हुए थे, प्रकाशमणि दादी, बार बार उनकी तरफ ज्यादा दृष्टि, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देते थे, फिर बाबा दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाते थे, फिर जैसे रुक जाते थे, फिर घूम करके फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देने। उस दिन बाबा को ये हो कि आज मैं बच्चों को सर्व शक्तियों से संपन्न कर दूं, जैसे भर दूं। फिर बाबा एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुके, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे। तो उस दिन मुरली पूरी होने के बाद भी दरवाजे तक जाते जाते बाबा को 5-7 मिनट और लगे। अब बस एक एक बच्चे को संपन्न दृष्टि से करते हुए दरवाजे के पास जाके बाबा ने बोला, क्या? अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले, ये भी टेप में भरे हुए हैं, सीडी में। अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। तो ये शब्द तब ही पहली बार ही और अंतिम बार ही बाबा ने उच्चारण किए। बाबा फिर अपने कमरे में गए और जैसे देह त्याग किया। तो भाव क्या है कहने का, कि आभास बाबा को जैसे हो गया, तभी बाबा ने क्लास भी 2 घंटा प्रीपोन्ड की, सारे दिन बरीशु दादी से कह के वो लिखाए, पूरे जितने इवेंट हुए उस दिन वो सब इस बात का सूचक है कि हमारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी तो हमें भी पहले से जो भीष्म पिता का माया का गायन है, इच्छा मृत्यु का, हमें पता चल जाएगा, जिससे हम भी सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ करके और एक बाबा के साथ हमारा बुद्धि योग होगा। तो एक ये उस दिन अनुभव किया। और बाबा को क्या, कई बार कि बाबा से जब पार्टी मिलने आया करती थी ना, तो 3 जगह होती थी जहां बाबा मिलते थे, या तो अपने कमरे में, तब बाबा का कमरा बहुत छोटा था, जहां तक पलंग पड़ा हुआ है उतना ही था, ये तो एक्सटेंशन बाद में किया है, पलंग जहां तक बहुत छोटा, कुछ 8x8 का या 8 इतना सही कमरा था बस। पीछे की तरफ से दरवाजा होता था और उसमें एक बाबा की गद्दी पड़ी रहती थी जहां बाबा बैठते थे, बच्चों से मिलते थे, सामने बच्चों के बैठने के लिए जगह होती थी, और एक पलंग और एक छोटी कुर्सी मेज जिस पर बाबा भोजन करते थे, बस इतना ही था और कुछ नहीं कमरे में। तो या तो जब 2-4 लोग होते थे वहां मिलते थे, या थोड़े 6-7-8 होते थे तो झोपड़ी में मिलते थे, या अगर बड़ी पार्टी होती थी तो हिस्ट्री हॉल में 15-20, तब तो 15-20 की बहुत बड़ी पार्टी समझी जाती थी, तो बाबा से वहां मिला करते थे। तो बाबा से जब मिलने पार्टी ब्राह्मणी जाती थी ना, टाइम दिया हुआ होता था, तब लच्छू दादी होती थी, अब टाइम कि भाई बम्बई पार्टी 10 बजे, 10:30 बजे, दिल्ली पार्टी 11 बजे, कलकत्ता पार्टी, ऐसे टाइम दिया होता था। ब्राह्मणी अपने समय पर जाती थी, वो देखती थी बाबा बैठे हैं, आंख भी खुली है, लेकिन अपनी मस्ती में जैसे बाबा मस्त है, कोई ध्यान में भी नहीं है, साक्षात्कार भी नहीं है, लेकिन ऐसे। तो ब्राह्मणी जाके सामने भी खड़ी हो जाती थी, कई बार बाबा का ध्यान ही नहीं होता था, फिर वो बोलती थी बाबा, तो कई बार बाबा को जैसे थोड़ा सा जर जैसा भी ऐसा महसूस होता था, जैसे शरीर यहाँ था, बुद्धि से बाबा ऊपर होते थे। फिर बाबा आके, हाँ बच्ची आ गए, हाँ बाबा फलानी पार्टी लाई हूँ, हाँ बच्चों को लेके आओ, फिर बाबा से आते थे, सब बच्चे मिलते थे, बाबा सबसे मिल के टोली खिला के विदा होते थे, और जब तक दूसरी पार्टी के आने का समय होता था, बाबा फिर एकदम जैसे अलग हो जाते थे। तो बाबा का एक अभ्यास बहुत पक्का था जो हम सबको भी करना है, और बाबा ने कहा है वर्तमान समय बच्चों के सामने 2 पेपर विशेष आएंगे। टोटल पेपर तो बाबा ने बताया ही है कितने हैं, भाई आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर है, खाना पानी ये नहीं मिलेगा, पांच विकारों का, पुराने संस्कारों का, प्रकृति के पांच तत्वों का पेपर, कुछ भटकती हुई आत्माओं का, ये सब पेपर तो बाबा ने बताए हैं। लेकिन बाबा ने कहा वर्तमान समय दो पेपर विशेष होंगे, एक पेपर शरीर का पेपर, क्योंकि ये शरीर हमारा सबसे निकट का साथी है, इसीलिए इस ये शरीर का पेपर हर बच्चे के सम्मुख आना चाहे, कोई जवान है स्वस्थ है वो ये ना समझे हमारे सामने नहीं, जितने भी बचे हुए हिसाब किताब होंगे वो शरीर के द्वारा हम सबको चुप्तु करने हैं। तो शरीर का पेपर आएगा उसके लिए क्या अभ्यास होना चाहिए, एक सेकंड में हम देह में आए और एक सेकंड में देह से न्यारे हो जाए, ये अभ्यास बाबा को पक्का था जो मैं आपको बता रहा हूं कि पार्टी आती थी और बस बाबा दे बैठा यहाँ है लेकिन देह से न्यारा, बुद्धि कहीं और, कभी भक्तों को साक्षात्कार कराना, कभी बाबा जो पांच स्थान बोले हैं फरिश्ता रूप में, कभी परम धाम, कभी सूक्ष्म वतन, कभी नई दुनिया, जो बाबा ने बताए हैं, बस बाबा देह से न्यारा। और फिर जब देह में कोई कार्य होता था, पार्टी से मिलना होता था, पत्र लिखना होता था, जो भी कार्य होता था, तो बाबा जैसे देह में आता था। और बाबा माने शिव बाबा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रह्मा बाबा का अपना अभ्यास। तो इसीलिए फिर बाबा जैसे देह से कोई आत्मा जाती नहीं है, निकलती नहीं है, लेकिन देह के भान से परे होके जैसे आत्मा अलग अलग जगह विचरण करती थी। तो ये एक बाबा हम बच्चों से भी चाहता है कि हमारा अभ्यास भी इतना पक्का हो कि जब हमें कर्म कुछ करना हो हम देह में आए और जब कुछ भी समय है देह से न्यारे हो जाए, अशरीरी हो जाए। और उससे क्या होगा कि देह के जितने भी कर्म भोग होंगे उनको वो बहुत तेजी से होंगे। हमें याद है बाबा का लास्ट वो जब बाबा ने ना वो शरीर छोड़ा था तो बाबा ने बताया था अंतिम कुछ मिनट की ऐसी स्थिति थी, एक तरफ कर्म भोग अपनी तरफ खींच रहा था, एक तरफ जैसे देह से न्यारी स्थिति खींच रही थी, दोनों में कशमकश चल रही थी। जो बहुत पुराने होंगे उस समय जिन्होंने ये बाबा का अंतिम अनुभव साकार का देह छोड़ने का जो पूरे सब जगह गया था वो, तो वो सुना होगा तो उन्हें ऐसी ही स्थिति शरीर छोड़ते समय हम बच्चों की भी होनी, क्योंकि देह के बचे हुए जितने भी कर्म भोग होंगे वो भी अपना पूरा फोर्स दिखाएंगे और हमारी जो भी कर्मातीत अवस्था के निकट हम पहुंचे होंगे देह से न्यारी अवस्था, वो हमें देह से न्यारा करेगी। तो दोनों में अंतिम में काफी कशमकश जो बाबा ने अपना उसका बताया था वो स्थिति होगी। तो ये बाबा ने जो कहा है कि एक सेकेंड में देह में आना, एक सेकंड में देह से न्यारे, उससे क्या होगा, शरीर में बहुत तेज व्याधि होगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी, सब कर्म भोग अपनी तरफ खींच रहे होंगे, लेकिन अगर आत्मा देह से न्यारी होगी ना, अनुभूति करने वाली तो आत्मा है, तो शरीर में जितना भी कष्ट होगा वो आत्मा को महसूस नहीं होगा। जैसे एनिस्थीसिया देते हैं इंजेक्शन क्लोरोफॉर्म का या कुछ, शरीर में काटेंगे भी खून भी बहेगा लेकिन दर्द महसूस नहीं होता। लोकल एनेस्थीसिया भी दिया होता है, वहां से कॉन्शियसनेस विड्रॉ हो जाती है, तो वो तो साइंस का साधन है, लेकिन हमारी आत्मिक स्थिति ऐसी होगी कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को विड्रॉ कर सकेंगे, तो देह में जितनी भी व्याधि होगी कर्म भोग खींचेंगे अपनी तरफ सब कुछ, लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा और हम बस बाबा के साथ जैसे मौज मस्ती में देह से न्यारे रहेंगे। एक तो बाबा ने ये पेपर बताया है जो ये, और दूसरा पेपर कौन सा आएगा बच्चों के सामने, वो आएगा दैवी परिवार का पेपर। अभी बाहर के परिवार वालों से, परिवार माने उन सबसे तो जैसे हम न्यारे हो गए हैं, क्योंकि जब ज्ञान में आते हैं तो लौकिक संबंध वगैरह उन सबसे धीरे 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 हमारे कनेक्शन कम होने लगते हैं, खाना पीना नहीं होता, संबंध उनसे अलग होता है, तो वो सब तो धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। लेकिन दैवी परिवार में हमारे बहुत प्रश्न पैदा हो जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है, बाबा ने कहा है हर एक कर्मातीत अवस्था अपनी अपनी है, कोई महाराजा महारानी पद वाले हैं, कोई साधारण प्रजा वाले, कोई बिल्कुल ही साधारण, तो हरेक की स्थिति अपनी अपनी है। तो कई बार हमारे मन में बहुत प्रश्न पैदा होंगे, अरे ये इतना पुराना भाई, ये इतनी पुरानी बहन, 40 साल 50 साल पुरानी है, अभी तक भी इनमें ये कमी, अभी तक भी ये क्रोध, अभी तक भी इनकी ये मर्यादा का उल्लंघन। तो जो इतने सारे उनकी अवस्था को देख के संकल्प आएंगे, तो वो हमारी अवस्था को भी ऊंच नीच करते रहेंगे। बाबा ने उसके लिए क्या बताया, दो बात बताई है। एक कि कभी भी किसी को एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, वर्तमान की दृष्टि से नहीं। वर्तमान में उसकी ये स्थिति है, लेकिन वो भगवान की चुनी हुई आत्मा है। भगवान ने एक एक बच्चे को चुना है, तो ये वही आत्मा है जो डबल ताजधारी थी। आज भले ये स्थिति है, लेकिन अंत में फिर ये डबल ताजधारी की स्थिति में आत्मा आने वाली है। तो हम भी हरेक को तीनों कालों की दृष्टि से देखें, नंबर एक। और नंबर दो कि ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है। बाबा ने कहा है मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है वो आज के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनसे भी महान है, क्योंकि भगवान ने चुना है, बाबा ने चुना है, बाबा की दृष्टि, और जरूर उस आत्मा में कोई ना कोई अति विशेषता है, इसलिए भगवान ने उसे चुना है। तो इसीलिए अगर हम कोई शंका करते हैं, अरे इसने ये, इसके ये मर्यादा का उल्लंघन, इसके अंदर ये कमी, इसका मतलब हमें भगवान के सिलेक्शन पर डाउट हो रहा है। और भगवान तो त्रिकालदर्शी है, उसने चुना है, इसका मतलब उस आत्मा में कुछ ना कुछ विशेषता जरूर इतनी महान है जो अपने समय पर प्रत्यक्ष होगी, इसीलिए भगवान ने चुना है। तो कभी भी हमारा उस पर ये डाउट ना हो। अगर हमारे मन में किसी भी दैवी परिवार की आत्मा के प्रति ये भाव आता है, अरे इसमें अभी तक ये, इसका मतलब हम भगवान के सिलेक्शन को चुनौती दे रहे हैं, बाबा आपने इसको सेलेक्ट करके ये गलत किया, ठीक नहीं किया, इसमें तो ये कमी, इतने साल के बाद भी नहीं। भगवान जानता है कि अंत में जो गायन है, अंत मते सो गते, जब इस आत्मा के प्राण तन से निकलेंगे उस समय इसकी गति बहुत अच्छी होगी, और अंत मते सो गते, भले वर्तमान में ये कुछ कमी है तो इस कारण से हमारा उस पर डाउट नहीं जाना। तो ये दो पेपर जो बाबा ने बताया, इन दो के लिए हमें ये दो तैयारियां पूरी करनी है। एक तो देह से आना, देह से न्यारा होना, और जब चाहे हम देह में आए, जब चाहे न्यारे हो जाएं, और दूसरा हरेक आत्मा को तीनों कालों की दृष्टि से देखना, और ये देखना कि ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है, भले अभी इसमें कोई कमी है, लेकिन ये संपूर्णता को प्राप्त होगी। एक ये बाबा की कर्मातीत अवस्था, आते थे सब पार्टी वाले, कई बात बोलते थे किसी किसी स्टूडेंट के लिए, बाबा के कोई बात नहीं बच्चे, समय पर ठीक। बाबा तीनों कालों की दृष्टि से देखे, तभी तो इतना बड़ा यज्ञ चलाते रहे बाबा, और ये होते रहे। एक ये पेपर जो हम सबके सामने आएगा। फिर अंत में जब बाबा ये कह के गए, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, बाबा कमरे में गए और दादी जी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते, बाबा ने छुट्टी ली। लेकिन असली वंडर तो उसके बाद भी देखा। क्या देखा कि बाबा ने यह शरीर छोड़ा 18 जनवरी की रात को है? लेकिन पूरी रात 18 जनवरी ये शरीर बाबा का रखा रहा, 19 तारीख की सुबह सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे के बाद संस्कार किया गया बाबा का, लगभग 65 घंटे के बाद। लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता हुआ, कोई शरीर में कालापन नहीं आया। नहीं तो आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है तो शरीर स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है, लेकिन बाबा के शरीर में जब हम कुछ वरिष्ठ भाइयों ने बाबा को स्नान वगैरह करा के शांति स्तंभ पर लाए जहां पर संस्कार बाबा का किया गया था, तो बाबा के शरीर में काफी हद तक वो फ्लेक्सिबिलिटी थी, नहीं तो शरीर एकदम स्टिफ हो जाता है। और ये प्रतीक है इस बात का, प्रकृति जीत का प्रतीक। माया जीत तो हम सब बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत, पांच तत्वों का ये शरीर बना है ना प्रकृति का, तो प्रकृति जीत भी हम बने हैं। और बाबा ने प्रकृति जीत बन करके प्रैक्टिकल दिखाया वो, और उसके न शरीर काला पड़ा न कोई दुर्गंधी, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया बाबा को, कोई केमिकल लोशन कोई वो नहीं लगाया गया, लेकिन फिर भी बिल्कुल बाबा का शरीर वैसे ही चमकता लगता था जैसे सो रहे हैं, हमेशा की तरह बाबा उठ के कहेंगे आओ बच्चे आओ मीठे बच्चे, हाथ फैला के जैसे, ऐसा बाबा का चेहरा वो ही चमकता हुआ। नहीं तो देह छोड़ने आत्मा जाने के बाद देह की क्या अवस्था होती है वो कहिए, हम सब लोगों को मालूम है। इसके लिए बाबा ने काफी बात बताई है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक एक बात बताऊंगा कि कैसे ये प्रकृति से बना शरीर, इस प्रकृति के तत्वों पर भी हम कैसे विजय प्राप्त कर लेते हैं। और बाबा ने एक तो कहा है कि रोज प्रकृति के तत्वों को अपनी शुभ भावना शुभ कामना का दान दो, प्रकृति के तत्वों से वार्तालाप करो, प्रकृति के तत्वों को अपना मित्र बनाओ, क्योंकि अगर अंत समय में हमारी मृत्यु प्रकृति के तत्वों के कारण हुई, भूचाल आया छतगिरी और तब हमने प्राण छोड़ा, तो ये तो हमारी सदगति नहीं होगी, अंतमते सोगति नहीं होगी, क्योंकि त्राही त्राही चारों तरफ मची होगी, कोई हड्डी टूटी होगी, कोई खून बह रहा होगा चारों तरफ, लेकिन हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े प्रकृति। और उसके लिए क्या होगा, बाबा ने कहा है जितना हमारा वॉइस लेस कनेक्शन होगा, एक तो वायरलेस कनेक्शन मोबाइल है ये है टीवी और टेलीफोन ये सब फेल हो जाएंगे। हम लोगों को भी एमटेक में पढ़ाया गया था कि ऐसा होता है अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, रिवर्सल ऑफ अर्थ पोलैरिटी, और जब ये होता है तो सारे कम्युनिकेशन सिस्टम वर्ल्ड के फेल हो जाते हैं। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, साउथ नॉर्थ बन जाएगा, उससे पूरा कम्युनिकेशन, ये तो एक है, बाबा ने कोई ये नहीं बताया लेकिन ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है, कोई ना कोई कारण तो निमित्त बनेगा ना कि सारे कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाए, उस समय हमारा वॉइसलेस कनेक्शन हो। और बाबा ने कहा है जितना बच्चों का वॉइसलेस कनेक्शन होगा उतने उनके पांव उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, जहां बच्चों का बाल बांका भी नहीं हो सकता, बाबा बंधा हुआ है एक एक बच्चे की सेफ्टी के लिए, प्रोवाइडेड बस वॉइसलेस कनेक्शन, निर्विकारी हमारा तन और मन, ये दोनों हमारे जितने पवित्र होंगे। अब बाबा बंधा हुआ है और इस ये कब होगा, जब एक एक तत्व को हम अपना मित्र बना ले। जस्ट इंडिकेशन के लिए बताते हैं, मानो जल तत्व है हा? अब चारों तरफ बाबा ने बताया सुनामी भी आएगी, फ्लड भी आएगा, अभी भी न्यूज आ रही है सब तरफ इंडिया की कितनी स्टेट्स में पानी पानी, बहुत फ्लड आया हुआ है, लेकिन फ्लड में भी जल तत्व को अगर हमने अपना मित्र बनाया हुआ होगा तो ये जल तत्व हमारे प्राण लेने का कारण नहीं बन सकता, दुख का कारण नहीं बन सकता। और मित्रता किनके बीच में होती है, जिनके समान स्वभाव संस्कार होते हैं, अक्सर करके फ्रेंडशिप उनके बीच में होती है। तो जल तत्व का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, शीतलता, उससे भी बड़ा गुण है फ्लेक्सिबिलिटी एडजस्टमेंट। जल को गिलास में लेंगे गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लेंगे कटोरी में, थाली में लेंगे थाली में, ऐसे ही अगर मेरा स्वभाव मैंने हर आत्मा के साथ मिलके मैं एडजस्ट होके चल सकूं, फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट होके, इसका मतलब जल तत्व का संस्कार मैंने अपने अंदर धारण कर लिया, तो ये जल तत्व कभी भी मेरी मृत्यु का, मेरे दुख अशांति का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जल के साथ हमारी मित्रता हो गई। इसलिए रोज जल तत्व को भी हम ये कहे, जल तत्व आपके समान जो भी जल में है, शीतलता का गुण है, आगे बढ़ने का गुण है जल में। जल देखो आगे बढ़ता जाता है, भले बड़ा पत्थर भी हो फिर भी अपना रास्ता बना लेगा और आगे बढ़ जाएगा। ऐसी जल की तरह हम सदा आगे बढ़ते रहे, कोई भी पेपर आए हम रुके नहीं। और जल जब रुक जाता है तो क्या होता है? मक्खी मच्छर बदबू आदि ये पैदा हो जाती है। तो अगर हमारे अंदर भी घृणा ईर्ष्या द्वेष नफरत बदले की भावना ये नेगेटिविटी कुछ पैदा हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा आगे बढ़ना रुक गया है। तो हम जल से ये चेक करते चलें कि हम कभी भी रुके नहीं। बहुत गुण है लेकिन एक दो का ये सिर्फ बता रहे हैं। तो जल जितने भी सुनामी आएगी जितना भी होगा, लेकिन जल हमारे दुख का, क्योंकि जल हमें पहले ही इंडिकेशन दे देगा इधर सेफ्टी है। और ये भी हम लोगों को बताया गया था कि जो पशु पक्षी हैं, जो प्रकृति के ज्यादा निकट हैं, उनको पहले ही टचिंग हो जाती है। कभी अर्थक्वेक आता है, कोई सुनामी, कोई बात होती है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं क्योंकि वो प्रकृति के नजदीक है। ऐसे ही ये तो जल का हुआ। पृथ्वी का बड़ा गुण कौन सा है? पृथ्वी हाँ सहनशीलता और ये सब तो है, लेकिन पृथ्वी दाता है। सबसे बड़ा गुण पृथ्वी का दाता का है। एक बीज आप बो दो पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। पृथ्वी से ही अनाज मिलता है, पूरा फल सब्जी पानी और पेट्रोल। पृथ्वी हर चीज की दाता है। ऐसे हमने भी अगर दातापन का गुण धारण किया होगा, दाता का मतलब कोई स्थूल चीज की बात नहीं है, उसकी तो लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन जो भी हमारे सम्मुख आए भाई उसको शांति प्रेम सहयोग आनंद शक्ति शुभ भावना शुभ कामना, जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता, हर आत्मा हमारे से कुछ ले करके जाए, खाली हाथ ना जाए, तो ये इसका मतलब पृथ्वी की तरह हमने दातापन का गुण धारण किया हुआ है। तो क्या होगा? चाहे जितने भी अर्थक्वेक आए, जितना भी पृथ्वी हिले, लेकिन वो हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को हमने अपना फ्रेंड बना लिया। पृथ्वी हमें इंडिकेशन दे देगी समय पर, और ऑटोमेटिकली हमारे न सोचते हुए भी हमारे पांव उधर बढ़ेंगे जहां पर सेफ्टी होगी। बाबा ने कई बार मुरलियों में ये बोला है, हो सकता है रिपीटिशन में और मुरलियां वो आए। तो ये पृथ्वी का और भी बहुत गुण है, सहनशीलता आदि आदि, लेकिन ये सबसे बड़ा गुण है। ऐसे वायु का कौन सा गुण है सबसे बड़ा? वायु देखो प्राण वायु है। हम खाने के बिना रह सकते हैं करीब 4-5 सप्ताह तक, पानी के बिना रह सकते हैं 3-4-5 दिन तक भी, लेकिन वायु के बिना हम 5 मिनट भी क्या 2-3 मिनट भी नहीं रह सकते। प्राण वायु है। श्वास कितना देर? कुछ सेकंड, कुछ में 1-2 मिनट तक ही रुकेगा। तो ये प्राण वायु है। तो बाबा ने कहा है आप ब्राह्मणों के प्राण कौन से हैं? ये उमंग और उल्लास, ये दो पंख हैं। लौकिक में दुनिया में ज्ञान और योग है, हम ब्राह्मणों के ये पंख हैं। उमंग उल्लास ये वायु है, ये प्राण वायु है। वायु जैसे हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है। ऐसे वायु की तरह अगर हम ना उमंग उल्लास में सदा हल्के रहेंगे, हम ऊपर उठेंगे, तो उसका क्या होगा कि वायु के कारण जितनी भी प्राकृतिक आपदा आएगी, चाहे साइक्लोन आए, तूफान आए, 200 300 400 किलोमीटर की रफ्तार से भी पवन बहे, वायु बहे, लेकिन ये साइक्लोन और टॉर्नेडो ये सब हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वायु की तरह हल्का रहना सीख लिया, चाहे जो भी पेपर आए हम भारी ना हो, मूड ऑफ ना हो। पेपर आता है एकदम हमारा बिल्कुल मूड भी ऑफ हो जाता है, बात करने की दिल नहीं करती, भारी हो जाते हैं। नहीं, वायु की तरह हल्के रहेंगे तो वायु हमारी मृत्यु का कारण, दुख का कारण कभी नहीं बन सकती। ये प्राकृतिक आपदाओं से बचने का वो है, क्योंकि अगर प्राकृतिक आपदा के कारण मैंने शरीर छोड़ा तो अंतमते सो गते, उसमें तो क्या होगा, दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि आपदा में तो दुख होगा, कष्ट होगा, हाहाकार होगा, अति हलचल चारों तरफ होगी। लेकिन बाहर अति हलचल हो, अंदर अति अचल हो, और वो तब होंगे जब इन तत्वों को मित्र बनाया होगा। इसी तरह आकाश का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? आकाश विशाल है। आकाश तो विशालता हमने अपने हृदय में धारण की होगी, और आकाश के गुण को साइंटिस्ट ने कैसे यूज किया है? सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, इसीलिए मोबाइल काम करता है, इसीलिए ये सारी के सारे चीजें काम करती हैं। तो अगर आकाश की तरह हमने विशालता का गुण धारण किया होगा तो हमारा कम्युनिकेशन विश्व की सब आत्माओं के साथ होगा। ऐसा नहीं कि जिनसे मेरे संबंध अच्छे हैं उनसे तो मैं बहुत देर तक घंटों तक बात करता रहूं, लेकिन जिनसे संबंध खराब है उनकी तरफ दृष्टि भी न दूं, वो सामने से आ भी रहे हैं तो नजर बचा के निकल जाएं। नहीं, ये विश्व महाराजा विश्व महारानी के लक्षण नहीं है। विश्व की एक एक आत्माओं के साथ हमारे संबंध हो, जो दादी कहती है विश्व की सब आत्माओं के पास तो हम जा नहीं सकते शरीर के द्वारा, अमृत वेले भी उठ के एक एक आत्मा को योगदान अगर करते हैं, जैसे दादी का चित्र है, गोला सृष्टि का हमारे हाथ में है और गोले के ऊपर हम योगदान करते हैं। तो भाव क्या है कहने का, कि जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हैं हर आत्मा को ये महसूस होना चाहिए, ये हमारे अपने हमारा भेदभाव वाला दृष्टिकोण किसी के प्रति भी न हो, तब क्या होगा, आकाश की तरह हमने विशालता धारण कर ली तो उससे लाभ ये होगा कि आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी विपदाएं होंगी, प्राकृतिक आपदाएं, चाहे एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स, क्लाउड बर्स्ट, रेन्स, बरसात, ये सब आकाश मार्ग से आने वाली चीजें हैं, तो ये हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आकाश को हमने मित्र बना लिया, और आकाश कभी भी इन विपदाओं को हमारे प्राण लेने या दुख देने के लिए कारण नहीं बना सकता। ऐसे आकाश के बहुत गुण मैं एक बता रहा हूं क्योंकि समय हो गया। और अंत में अग्नि तत्व, पांचवा तत्व अग्नि। अग्नि तत्व प्रकृति में किस के द्वारा रिप्रेजेंट होता है? सूर्य के द्वारा। तो सूर्य में क्या विशेषता, अग्नि में क्या विशेषता होती है? क्या विशेषता है? अग्नि में जो भी चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो वॉल्केनिक योगा जो बाबा ने कहा है, ऐसा योग, ज्वालामुखी योग की अगर जब हमारी स्थिति होगी तो क्या होगा, आत्माएं आएंगी, रोती हुई आत्मा आए हमारे अग्नि रूप से परिवर्तित होके हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। वो कब होगा? जब हमने ज्वालामुखी योग उसका अभ्यास किया हुआ। और ये अग्नि रूप से क्या होगा, इसीलिए अभी भी दादियों के सम्मुख, बाबा के सम्मुख भी, जैसे मैं बता रहा था ना, जाते थे ये पूछेंगे ये पूछेंगे, और बाबा के सम्मुख गए, दृष्टि दी, बिल्कुल गुम हो जाते थे, भूल जाते थे, विदेही हो जाते थे, क्या पूछना है उसका भी भान नहीं रहता था। ये है ज्वालामुखी योग की स्थिति, जो बाबा अब हम बच्चों से भी चाहता है। इसीलिए हम ये स्थिति अगर धारण करी होगी, अग्नि को मित्र बनाया होगा, और इसका प्रमाण क्या है अग्नि को मित्र बनाने का, जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य के सम्मुख जब हमारा मुख होता है तो छाया हमारी पीछे होती है। तो ज्ञान सूर्य बाबा की तरफ अगर हमारा मुख होगा तो जो भी हमारी वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं, छाया यानी माया, जो भी कमजोरियां हैं वो सब पीछे रहेंगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे कमजोरियां पीछे छूट जाएंगी। लेकिन जैसे ही बाबा की तरफ हमारी पीठ हो गई, मुख फिर गया, तो क्या होता है, छाया आगे आगे चलती है। तो वो जो हमारी कमजोरियां हैं वो हमारा मार्ग प्रदर्शन करेंगी, हम कमजोरियों के वशीभूत होकर के उनके पीछे पीछे चलते जाएंगे, जो हमारी अवनति का कारण हो जाएंगी, उन्नति का कारण नहीं। इसीलिए बाबा की तरफ कभी भी हमारी पीठ ना, सदा मुख रहे बाबा की तरफ। कभी भी कोई पेपर आए, कोई प्रॉब्लम आए, समस्या आए, हमारा जो विश्वास है बाबा के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने स्वयं के प्रति, कभी भी दिग्मग ना हो, डगमग ना हो, अचल अडल रहे, अडोल रहे। तो ये प्रकृति के पांच तत्वों को अपना बनाने की कला है जो बाबा में। इसीलिए बाबा ने जब शरीर छोड़ा ना, पूरा शरीर बिल्कुल सारा फ्लेक्सिबल चमकता हुआ और एकदम प्रकृति जीत का प्रतीक। तो हम सबको भी माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनना है, इस बात को हम ना भूले, क्योंकि यही प्रकृति का शरीर है पांच तत्वों का, जो अंत समय तक, आदि से लेकर अंत तक हमारे साथ है। पहले जन्म से लेकर सतयुग के कलयुग तत्व शरीर तो वही है, उन्हीं पांच तत्वों का बना है। फर्क ये है, वहां तत्व सतो प्रधान है, यहाँ तत्व तमोगुणी हो गए, लेकिन तत्व तो वही है, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, उन तत्वों से ही बना है। तो इन तत्वों के सहयोग के बिना हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रकृति जीत और माया जीत दोनों बनना है। रोज समय निकाल के जैसे हम योग करते हैं अपना, ऐसी प्रकृति के तत्वों को भी कुछ भी पांच मिनट भी जरूर अवश्य दान करें, उनको अपना मित्र बनाएं, उनके साथ अपने गुणों को मैच करें। ये जल तत्व आप में शीतलता है, मुझे भी शीतलता का गुण धारण करना है, आप में फ्लेक्सिबिलिटी है, हर आत्मा का हर गुण का आप निकालेंगे कम से कम आठ आठ दस दस गुण है वो निकाले हुए हैं, और उनके ऊपर उन गुणों को हम अपने अंदर आत्मसात जितना करते रहेंगे तो हम सब भी प्रकृति जीत और माया जीत बन जाएंगे। और बाबा की कर्मातीत अवस्था की यही विशेषता थी। ये वर्णन का भाव यह है कि बाबा ने जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, हम सब भी इनको धारण करके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके और फिर अंत में माया जीत, जगत जीत, प्रकृति जीत बन के कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके बस जो भी हमारी मंजिल है उसे प्राप्त कर सकते। ओम शांति, ओम शांति।